लोग
जेनी 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 नहीं ताली ताली मत करो। मैंने क्या कहा है कि आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए और सबको शांत हो जाना चाहिए। आप लोग सब शांत हो जाइए। मुझको मैंने तो आपसे प्रार्थना की है कि शांत होने का भी आपको कहना ही नहीं चाहिए। जैसे प्रार्थना प्रार्थना का आरंभ करना है उसके पहले ही सबको शांत हो जाना चाहिए। अभी कैसा अच्छा लगता है देखो। बस हाँ ये बैठ जाए, यहाँ जो है वो सब बैठ जाए, सबको बैठ जाना चाहिए, सब बैठ जाइए और शांति से बैठे रहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि ये दो चार रोज हैं वो ऐसे हैं कि हर एक शब्द जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तो इसलिए अगर आप शांत न रहें और सबका सब सुने नहीं तो पीछे ये नहीं बन सकता है। तो जब लोग कहते हैं आगे वाले हैं तो उनको बेच जाना चाहिए। मुझको देख तो लिया, कोई आँखों से तो सुनता नहीं है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आँखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए और अदब बेचकर अदब रखकर बेच जाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है आपको कि सब कोई आपस में बात न करें लेकिन शांति से बैठे रहें जब तक मैंने बोलने का खत्म नहीं किया है वहाँ तक। अभी रखो नम्यो प्रार्थना।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीभा मा गृधा कस्य स्विदनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गा अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पाथ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्रः वीतरागभयक्रोधस्थिततीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहस्तत्तप्रातिषु भाषवम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुरुङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैर्व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवाचं रसो प्रस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यदतो यपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसत्सङ्गस्तेषु विधायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रे चलन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य प्रज्ञां वायुनामभिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाण्येन्द्रियार्थैर्व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स्वानिशा पश्यतो मुने आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यत्सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम् प्राप निमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त्रकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते अहिंसा सत्यस्थेय ब्रह्मचर्य सङ्ग्रह शरीरत्र भयवर्जन सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना हि एकादश सेवा विनम्रत्वे व्रतनिश्चये
अहूर्जबिल्लाहि विनश्यत्वानिर्रजे बिस्मिल्लाहि रहमानिर्रहीम् अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर्रहीम्
को गिरफ्तार करो कुरान का भजन बंद करो कुरान का भजन बंद करो कुरान का भजन बंद करो मिस्टर जिला को गिरफ्तार करो मिस्टर जिला को गिरफ्तार करो
अभी सुनो
कुरान शरीफ का तो हो गया, देखिए अभी अभी उसको सटाना नहीं चाहिए, वो कहने दो उसको कहना है तो, अभी ऐसा मत करो, वॉलंटियर अभी हो गया, वो कहाँ से गिरफ्तार करेंगे, अभी सुनो, अभी अभी खामोश रहिए, अभी आप लोग सब सब शांत हो जाइए, उसमें क्या फायदा है, मैंने कहा है कि मैं बंद नहीं करता हूँ और प्रार्थना चलने देता हूँ, क्यों कि आप तो बड़ी शराफत बता रहे हैं, और कोई ऐसा कहते हैं उनको गुस्सा आ गया है तो बोलने दें, उससे हमारा क्या बुरा होता है, बुरा तो उनका होता है, और हम अगर खामोश रहें तो आखिर में उसको खामोश लेना ही है, तो इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस लोग पीछे उनको छोड़ दें, उनको पुलिस चौकी में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जो कुछ भी ईश्वर को करना है वो करेगा, और लोग दूसरे जो वहाँ से दौड़ रहे हैं वो निकम्मा दौड़ते हैं, उनको शांति से प्रार्थना में हिस्सा देना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ वो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी चलिए भजन को, बस छोटा
कौन बतावे
मद मा
ये तो चलता है, चलने का नहीं ये लो ना।
मैंने इसी में बोलना है आपको,
हैं
इसी में बोलना है,
यही तो मैं कहता हूँ ना। वो तो उनको चाहिए, वो सब खोल पाल किया है, क्या करें। भाइयों और बहनों, वो भाई जो अंग्रेजी टोपी पहनकर बोल रहे थे कि दो चीज़ तो साथे मिला ली, वो भी कैसी बात है कि एक तो कुरान का पढ़ना बंद करो, वो तो कहना ही नहीं चाहिए उनको, और पीछे जिना सेना ठीक तो कहते थे, वो तो मैं भी मानता हूँ ठीक कहते हैं, आपके साथ में मिल जाता हूँ अभी सुनिए तो से, सुनने बिना क्यों आप बोलते हैं ऐसे, और ऐसा कहोगे तो फिर तो वो तो मुझको बोलना तो है, आप कितना भी चीखे तो भी, तो थोड़ी सी अदब रखनी चाहिए। मैं आपको साथ देता हूँ, वो भी आपने खामोशी भी नहीं रखी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं तो वो कहते हैं कि जिन्ना साहेब को गिरफ्तार करो, आपकी तो ताकत तो है, मेरी भी ताकत है, लेकिन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो कहते हैं कि ठीक तो है, उससे तो वो गिरफ्तार होने वाले, इतना ही नहीं वो तो क्या ही बिगड़ेंगे, और वही मेरा, मैं जो यहाँ जब से आया हूँ तब से आप लोगों को हिंदुस्तान को ये कहो कि सिखा रहा हूँ, लेकिन वो तो बड़ी बात हो गई, मैं शिक्षक कहाँ का, लेकिन इतना तो है कि पागल आदमी भी लगा तो सकता है, तो मैं आपको 15-30 साल से बता रहा हूँ, और वहाँ जनूबी अफ्रीका से तो यही कहो कि जब मैं वहाँ गया तो 98 साल में गया, तब से वही बात बता रहा हूँ। तो देखिए कितने बरस हो गए, 47 तो ये और 60 कुछ है, तो 54 बरस हो गए। 54 बरस से मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारे शत्रु को कैद कर लेना है, शत्रु है ना जेना साहब, मैं तो उनको शत्रु मानता ही, मैं तो यही आपको कल कहा कि मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने दस्तखत किए, तो यह कहो कि मेरे साथ उन्होंने दस्तखत किए कि बात तो हो गई, इसी तरह से नहीं, लेकिन मैं तो जो अपने को मेरा शत्रु मानते हैं उनका भी नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मैं उनकी दुश्मनी नहीं करता, मैं जो बात कहूँ वो सही बात कहता हूँ, तो पीछे अंग्रेज मेरे दुश्मन बन गए थे, मैं उनका दुश्मन नहीं बना, इसलिए मैंने अंग्रेजों को भी सुनाया कि मैं तो आपका भी प्रतिनिधि हूँ, इसी तरह से मैं तो जिना साहब का भी प्रतिनिधि हूँ, हिंदुस्तान में जितने अपने को दुश्मन मेरे माने उनका भी प्रतिनिधि हूँ, एक तरह से नहीं, वो कहें कि जो वो कहाँ का हमको हमारा प्रतिनिधि बना, हम कहते हैं दुनिया को सुनाते हैं कि नहीं है, वो सुना दिया, वो बात भी सही, उनकी बात सही, लेकिन मेरी भी सही, मेरी क्यों सही नहीं, क्योंकि मैं तो उनका दोस्त बनकर उनके लिए भलाई की बात करता हूँ, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि बन जाता हूँ। सब मैंने आपको कहा कि एक तो आदमी दूसरों को कैद रखते हैं तो दुश्मनी से रखते हैं जिससे मारपीट का एक सिलसिला पैदा हो जाता है, या तो मोहब्बत से कैद रखते हैं, जैसे आपको मैं कैद रखता हूँ ऐसा कहा जाए, वो तो भाषा तो थोड़ी बिगड़ गई ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात तुरंत मान जाते हैं और अदब से बैठ लेते हैं, सुनते हैं, तो एक किस्म का ये शायद मैं कह सकूँगा कि आपको मैं कैद बना लेता हूँ। उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि जिना साहब को किसी न किसी रोज़ हम कैद कर लेंगे, इस तरह से नहीं, उनको पुलिस तो क्या पकड़ेंगे, पकड़ें कैसे पकड़ें, मुझको क्या पुलिस पकड़ कर करें, खान साहब यहाँ बैठे हैं इनको कैसे पकड़ सकें, लेकिन उनको कैद मोहब्बत तो कर सकती है, जो कैद उनको सल्तनत नहीं दे सकी, और दें तो भी वो कैदी सचमुच उनके नहीं बन सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से तो वो कैद हो जाते हैं, तो जना साहब को मोहब्बत से कैद कर सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ को एक दिन में कर सकते हैं, फिर हो सकता है और अकेला मैं कर सकता हूँ, तो आज मैं उसको यहाँ लाऊँ और आपके सामने खड़ा रख दूँ कि देखिए मैं कैद करके जना साहब को लाया, तो वो टोपी वाले थे वो सही, और दूसरे आदमी ने कहा कैद करो वो सही कहता है, वो सही कि मैं सही, कोई रोज अगर मैं जिंदा रहा तो वो भी हादसा आपको बता दूंगा। मैंने बातों बताया, एक शख्स का नाम था मीर आलम, वो कहाँ का था, इनके मुल्क का था, वो सरहदी सूबे का था, पठान था, और ये भी तो पहाड़ से लगते हैं ना, उससे भी ऊंचा था, और मदन भी ऐसा तकड़ा था, और मेरा तो वो दोस्त था, और हमेशा मेरी ऑफिस में आता था। मीर आलम को जो मैं कहूँ वो बस एक ऐसा ही कहो ना कि खुदा ही आवाज बन गया कि मीर आलम ऐसा करो तो ऐसा ही कर लेता, लेकिन एक वक्त बिगड़ा तो मेरा दुश्मन बन गया। वो सारा का सारा किस्सा तो आपको नहीं समझाना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, तो ईश्वर यहाँ उसको, और वो भी लाठी तो कैसी थी, लेकिन ईश्वर को दूसरा करना था ना, तो उसकी लाठी मेरी वो यहाँ तोड़ना था, उस लाठी में तो शीशा भरा था, उससे एक बराबर यहाँ लगाई, लेकिन यहाँ के बदले में यहाँ लगी, और पीछे ये दांत थे ना तो वो तो टूट गए, बिल्कुल तो नहीं गए, और यहाँ से चीरा काप पड़ गया। वो मीर आलम खान का नहीं था, लेकिन मुझको तो टमर आ गया, तो पड़ा तो पत्थर का पेवमेंट था उस पर पड़ा, और पीछे एक अंग्रेज था उसने मुझको उठा लिया, और पीछे दूसरा अंग्रेज था उसके घर में मुझको ले गए, और आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन हुआ क्या कि उसको पीछे मैंने कैद कर लिया। कैसे कैद किया कि मीर आलम की आँखें खुल गई कि वो मानता था ऐसा मैं लालची आदमी नहीं हूँ। उनको किसी ने सिखा दिया, पठान ऐसे ही रहते हैं, भोला रहते हैं, बादशाह रहते हैं, इसलिए वो बादशाह बन गए क्योंकि भोले हैं। उनको सब आदमी वो खतरा में डाल सकते हैं, कैसे, धोखा देकर, कहो आप तो बड़े हैं, वो मान ले के बड़ा हूँ, और आपके पास से कुछ ले जाते हैं तो ले जाते हैं, उसमें उन्होंने क्या खोया। लेकिन वो जो उन्होंने धोखे में डालने की कोशिश की वो धोखे में पड़ गया, ऐसा होता है, लेकिन पड़ तो जाते हैं, इसलिए वो मीर आलम खान भी बड़ा भोला था। तो उसने किसी ने कहा कि अरे तू तो पागल है, उसने कब जनरल स्मर्ट्स के पास से 15,000 पाउंड लिया। बात ये थी कि मैंने 15,000 पाउंड उसके पास ले लिया, और पीछे कौम को मैंने बेच डाली, वो तो बड़ा चार्ज हो गया, और पठान दूसरा क्या कर सकता था, और पठान भी तो उनकी भर्ती में आया था अंग्रेज़ों की लड़ाई के लिए, उसमें से पीछे छूटे कितने रह गए उसमें का वो पठान था मीर आलम खान। तो पीछे उसने सोचा कि मैंने तो जो मेरा खैरख्वाह था उसका मैंने गुनाह कर लिया, तो पीछे वही आया, और मेरे साथ जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि कोई दिन अगर खुदा को मंजूर है, ईश्वर को मंजूर है, तो जना साहब यहाँ बैठेंगे और आपको कहेंगे कि मैं आपका दुश्मन नहीं था, एक वक्त दुश्मन सा लगा था, मैंने गलती भी की, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान लेना चाहता हूँ तो भी हिंदुओं के पास से लूँगा, तो हिंदुओं को मार के देंगे तो पीछे क्या हुआ, वो कोई इस्लाम नहीं हुआ, वो पाकिस्तान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो किसी न किसी रोज़ उसको कहना है कि मैं पाकिस्तान तो लेना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो मेरा होगा वो तो पीछे ऐसा आला दर्जे का होगा कि सब उसमें चले आएंगे, तो ऐसे पाकिस्तान में हम सब जाएंगे और पीछे बड़ा रोशनियाँ करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, उसका नाम तो पाकिस्तान हो सकता है, आज तो ये है ही नहीं, लेकिन वो दिन कैसे आ सकता है। वो भाई ने कहा, वो जो टोपी वाले थे उन्होंने कहा इससे नहीं आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ उससे तो आ सकता है। तो उसमें क्या क्यों उसमें कोई यूँ आप मानते हैं कि मैं बुजदिल आपको बनाना चाहता हूँ, और या तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको झूठी उनको खुशामद करें, ये बात नहीं है, खुशामद करने की बात नहीं है, लेकिन बहादुर बनने की बात है। मैंने कहा ना कि वो सीख है, एक सीख को 1.25 लाख के बराबर है, उसका मायना मैंने बता दिया, दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके माने ये हो गया कि 1.25 लाख आदमी अगर हाजिर हो जाए तो उनके सामने एक खड़ा रहेगा, और खड़ा रहकर क्या करेगा, उसके पास तो रहता है ना क्या, कृपान खोल कर नहीं, वो कृपान तो निकम्मी बात है, लेकिन वो रखता है, उसका मतलब ये है कि मैं कोई कृपान के मातहत नहीं होने वाला हूँ, इसलिए मैं कृपान रखता हूँ, कृपान दूसरों को मारने के लिए नहीं, लेकिन ये बताने के लिए कि 1.25 लाख आदमी जमा होंगे तो भी मैं उनका सामने खड़ा रहूँगा, और कहूँगा कि अच्छा आपको जो कुछ भी करना है वो कीजिए, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन मारना है मुझको मार डालो। तो आप 1,25,000 में से क्या एक आदमी आकर मुझको मार सकता है, लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा। यो आपको आप ऐसा कहने वाले हैं कि बुजदिल था। मैं कहता हूँ कि जो बुजदिल उनको कहेगा वो बुजदिल है। तो मैं तो आप लोगों को वो बहादुरी सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं वो निकम्मी बात है, वो भी करो क्योंकि वो मार डालेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि सारा हिंदुस्तान जल जाए तो भी हम पाकिस्तान नहीं होने देंगे, उसमें हम कभी शरीक होने वाले नहीं हैं। हाँ, शरीक होंगे उससे नहीं, हम उसमें मदद देंगे कब, कि जब हमको समझा सकें, तलवार के जरिए से नहीं लेकिन अक्ल के जरिए से, सेंस से, हमारा दिलों पर चोट लगाकर कि ये तो खूबसूरत बात करता है, उसमें इतनी झंझट क्या थी, सीधी सीधी बात थी, वो हम क्यों बेअक्ल थे आज तक के नहीं समझे। वो तो कब हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहे हैं तभी भी उनको बताना है कि आप किसी मुसलमान से न डरें। मुसलमान वो नहीं है कि जो दूसरों को डराता है, डराता है तो कैसे, क्योंकि वो खुदा परस्त थे, इससे कि लोग उससे, आप लोग ऐसा कहना, वो तो बेवकूफ़ होंगे, वो कहें कि मुझसे आप डरते हैं, मुझसे क्या डरते हैं, लेकिन वो कहें तो हमने तो देखा गांधी के सामने 2,000-3,000 या कितने है, मैं तो जानता नहीं हूँ। और उन्होंने कहा वो तो बूढ़ा आदमी, उसमें कुछ ताकत नहीं थी, एक आदमी उस पर निकले कि यहाँ बस लगा दे तो गुम वो पड़ जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन उसकी बात वो सुनते थे और शांति से सुनते रहते हैं। वो क्या चीज़ थी, वो डर था क्या? अगर डर था तो मोहब्बत का डर है, तो मोहब्बत का डर ले सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को लावे, मुसलमानों के मार्फत से हमारा खून करे, हमारे घरों को जला दे, वो तो बात नहीं हो सकती है। तो उन्होंने तो इकरार कर लिया, ऐसा ही कहो कि खुदा खुदा को हजर नजर जानकर दूसरा क्या हो सकता है, कि जब ऐलान कर लेता है और अपने दस्तखत दे लेता है और वाइसराय साहब के सामने मेरे दस्तखत भी उनके पास है, तो इसका सबब तो माना यही हुआ कि खुदा को हजर नजर जान के उन्होंने दस्तखत दिया। कि हम जो जो ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल हकूक है, उनके लिए वो तशद्दुद नहीं करेंगे, तशद्दुद से नहीं ले सकते हैं, लेकिन तो उसका मतलब ये हुआ कि दिलों को बहला कर, दिलों को समझा कर, सेन को समझा कर हम देने वाले हैं, वो एक आम उन्होंने कह दिया है, तो हम तो उसी पर चले। इसलिए मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं मजबूर करके, लेकिन हमको बताकर समझाकर सब कुछ ले सकते हैं। इसलिए आप भी वही कोशिश करें जना साहब को कैद करने की, जैसे मैं कैद करता हूँ। वो भाइयों ने कहा इस तरह से कैद करने की बात नहीं है, वो तो एक मैंने आपको बात कह ली, आज जो कहना चाहता हूँ तो दूसरी बात है, थोड़ी सी ही आज तो कह दूँगा, नहीं तो मेरा वक्त चला जाएगा। कि मैंने कल आपको कहा ना कि हिंदुस्तान में हम बिरला राज नहीं चाहते हैं, तो बिरला तो मेरे दोस्त हैं, वो तो कहते हैं कि वो मेरे पुत्रवत हैं, क्योंकि छोटे हैं मेरे से, यूँ तो बड़े हैं उम्र में भी, लेकिन मेरे नज़दीक तो बहुत छोटे हैं, तो वो तो यूँ कहते हैं। करोड़पति तो है, उसमें शक नहीं है, लेकिन मैं बिरला राज नहीं चाहता हूँ, और आपके लिए भी बिरला राज नहीं है, नवाब भोपाल का राज चाहिए हमको। हमको क्यों चाहिए? नवाब भोपाल भी कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, वो तो राजा है, मैं तो रैयत हूँ, रंक हूँ, वो उनका दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन वो कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तो वो भी मेरे दोस्त। तो मैं कहता हूँ दोस्त तो सही, तो मेरे घर के दोस्त रहे, लेकिन वो उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज नहीं आ सकता है, तब किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में, और आप लोगों के हाथ में भी नहीं, लेकिन जो मिस्किन 60 करोड़ देहात में पड़े हैं, हिंदू कहो मुसलमान कहो कोई भी, उन मिस्किनों का राज होने वाला है, उसका नाम पंचायत राज है। वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। ये तो बात मैंने आप लोगों को कह ली, तो मैं ये कहना चाहता था कि वो दूसरी बातें तो मैंने कह ली, लेकिन अगर हम उनका नहीं चाहते हैं राज, तो पीछे कैसे, तो क्या हम सल्तनत को कहें कि आप राजा लोग हैं उनको काट डालो, वो बात नहीं है मेरे पास। लेकिन वो तो एक आदमी है, घनश्याम दास बिरला कौन है, एक आदमी है। उनके पास मजदूर लोग पड़े हैं, उनको पैसे देते हैं, पैसे आज छोड़ दें मजदूर लोग बिगड़ जाए, तो बिगड़ते भी हैं, तो कहेंगे कि हमें सलाम, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, हम चले जाते हैं, तो उनके करोड़ रुपये उनकी जेब में रह जाए। पैसे उनके पास तो ज़मीन पड़ी है, तो ज़मीन भी वो थोड़ा ज़मीन में से पाक लगाते हैं, तो वो तो दूसरे आदमी उस ज़मीन को में कुछ बोते हैं, उसमें से निकालते हैं, तब तो उनका काम चलता है। तो करोड़पति के करोड़ रुपये तो निकम्मे हैं। जब आम लोग जागृत हो जाते हैं तो आम का राज बन जाता है। अब लीजिए नवाब साहब को, तो नवाब साहब के मातेहर जब रहते हैं तब तो वो नवाब साहब बन सकते हैं, वो बिगड़े तो नवाब साहब क्या करेंगे, नवाब साहब उसी में कैद हो जाएंगे। उसके पास रिसाला है, उनके पास और बर्ची है, तोप पड़ी है, राइफल है, वो सब हैं, वो कितने आदमी को मार डालेंगे, और मार डालेंगे पीछे नवाब साहब किस पर राज चलाएंगे, वो क्या उनके घोड़े सवार है उनके पास, तो घोड़े सवार उनको मार डालेंगे। इस तरह से कोई चला नहीं सकते राज। राज चलाना वो दूसरी बात है कि जब तक लोग या तो बिल्कुल अनजान रहें या तो लोग समझ कर कहें कि ये नवाब साहब तो भले हैं, वो जितनी अपनी बुद्धि है, अपने पास जायदाद है, वो सब हमारे लिए खर्च करते हैं, तब तो पीछे ट्रस्टी बन जाते हैं। ट्रस्टी बन कर रहें, दूसरी तरह से नहीं रह सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि वो तो एक है, लेकिन उनके वहाँ जो रियासत है वो कौन है, वो तो करीब करीब सब के सब हिंदू पड़े हैं। तो ये कहो कि नहीं, वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए वो मुसलमानी राज है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? कश्मीर के महाराजा वो तो बहुत बड़े हैं, और महाराजा धीराज कहलाते हैं, सब हैं, उनके पास राजपूत फौज भी पड़ी है, लेकिन कश्मीरी कौन है, कश्मीर में कितने मुसलमान हैं? तो मैं तो आपको कहता हूँ कि कश्मीर है वो तो मुसलमानों का राज है, क्यों कि वहाँ ज़्यादातर लोग वो मुसलमान पड़े हैं। कश्मीरी पंडित तो हैं, मुट्ठी भर पंडित पड़े हैं, मुट्ठी भर पंडित कोई कश्मीर का राज चला सकते हैं? न महाराजा साहब चला सकते हैं। अब लीजिए वो हैदराबाद, वो तो बहुत बड़ी रियासत बन गई, और हमको लोग सुनाते हैं कि हाँ देखो तो सही, चले जाएं तो पीछे हैदराबाद है, वो तो सारा हिंदुस्तान को पीछे सर कर लेंगे। क्या सर करेंगे वहाँ? हैदराबाद में हैं कौन? हैदराबाद में जो लोग पड़े हैं वो तो हिंदू पड़े हैं, है मुसलमान पड़े हैं, मुसलमान कुछ आ गए हैं वो भी हैं, थोड़े हैं बेशक, लेकिन सचमुच जो वहाँ रैयत पड़ी है वो तो हिंदू पड़े हैं। तो ये खूबी की बात पड़ी है कि जिस जगह पे जब हमको स्वराज मिल जाता है उसके मानी क्या है, और अगर अंग्रेज सच्चे हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो कर लिया है वो सच्चाई से किया है, ऐसा मेरे पर असर हुआ है। अगर वो सच्चाई से किया है, उसमें कोई फरेब नहीं है, तो पीछे उनका थोड़ा थोड़ा हाथ वहाँ हैदराबाद में रखे, भोपाल में रखे, कश्मीर में रखे, त्रावणकोर में रखे, इधर उधर जो बड़ी रियासत है, बड़ौदा में कहो, राजकोट में कहो, तो वो तो दगाबाज होने वाले हैं। अगर वो दगाबाज नहीं होते तो पीछे पैरेमंशी छोड़ दी उसका मानी क्या, कि पीछे राजा मिट गए, राजा वो रैयत बन गए, लेकिन उनके पास अकल है, होशियारी है, और वो कहते हैं कि हम तो आपके खादिम हैं, जैसा मैंने सुना तो सही, करते हैं ऐसा कि नहीं, कि वो पुराने बीकानेर महाराज थे ना, मालवीय जी महाराज जब जिंदा थे, और जब मैं तो नया सया था तो वहाँ मुंबई में, तो वो और पीछे ग्वालियर के, उन्होंने कहा कि हम तो रैयत जैसे हैं, और वो मालवीय जी महाराज बैठे थे, और मालवीय जी महाराज के पास मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझको भी कुर्सी में बिठा दिया, और वो दो महाराजा वो हमारे पैरों के पास बैठ गए। तो कहो कि वो तो हमको एक फुसलाने के लिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने देख लिया कि हम यहाँ राजा नहीं रह सकते हैं, और उनको रैयत के माने नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमको बताना है कि हम तो रैयत के नौकर हैं, रैयत के राजा नहीं हैं। लेकिन उस वक़्त तो सल्तनत अंग्रेज़ों की बड़ी ज़ोरों से चलती थी, आज तो वो सल्तनत यहाँ अपने आप निकल जाती है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि सल्तनत डूब जाती है, लेकिन यहाँ से सल्तनत हट जाती है अपने कामों के लिए, अपने कारण से, या तो हमारी ताकत से जो कुछ भी हो, तो वो सल्तनत जब हट जाती है और उसमें कोई कोई दगा नहीं है, तब तो होता है क्या, वो जितने राजा है वो रैयतों के सेवक बनते हैं, तब तो रह सकते हैं। लेकिन वो कहें कि नहीं, हम तो कंस्टिट्यूंट असेंबली में नहीं आएंगे, अथवा तो ये कहें कि जितने मुसलमान राजा हैं वो मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे, जितने हिंदू राजा हैं वो हिंदू के साथ रहेंगे। हिंदू तो कोई है नहीं, सचमुच तो कांग्रेस है, कांग्रेस में ज़्यादा तादाद में हिंदू है इतना ही है, लेकिन कांग्रेस तो सबकी है, तो कांग्रेस में रहेंगे ऐसा कहो, या तो मुसलमानों के साथ रहेंगे। ऐसा अगर राजा लोग करें तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में राजा लोग हैं क्या, और किस तरह से राजा लोगों में भी यही प्रवेश पैदा हो गया कि मैं मुसलमान हूँ तो हिंदुओं को मार डालूँ, उसका मतलब ये हो गया ना कि वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया। तब क्यों आज तक उसने हिंदू का राजा बनकर बैठा, तो उसका दुश्मन बनकर बैठा। हैदराबाद के निजाम साहब है, वो तो हिंदुओं का दुश्मन बनकर वहाँ बैठे हैं क्या? ये तो एक खतरनाक बात हो गई। मैं कहता हूँ कि वो खुदा तो कभी, इंसान तो भूल जाए माफ़ कर सकता है, लेकिन खुदा कभी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो बड़ा दगा बन गया कि मुसलमान राजा है वो पीछे मुस्लिम लीग के बन गए, और जो हिंदू राजा है वो कांग्रेस के बन गए, तो इसलिए कांग्रेस को तो हिंदुओं को बना दी गई। इसलिए मैं आपको कहना चाहता था कि हम माउंट बैटन साहब की ओर न देखें, वो देखने से उनका भी हम बिगाड़ते हैं, और वो करना नहीं चाहते हैं वो उनके पास से करवा ले, उनके पास से क्या करवाना था, उनको तो हमारी शांति देनी चाहिए। उनको कहें कि आप आए हैं, आप बैठें और आप आराम से यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से सब अच्छी तरह से हो गया है, आपने जो इंतजाम करना था वो भी हो गया, पीछे चले जाएं। इस तरह से उनको अगर हम राहत देना चाहते हैं तो भी हम अपनी ओर देखें, ये नहीं कि वो सोमवार के रोज़ कुछ न कुछ हो जाएगा, या तो मंगल या तो बुधवार के रोज़, अरे कुछ न कुछ कुछ होने वाला नहीं है अगर हमारे में कुछ है तो। ये तो मैंने आप लोगों को राजा के बारे में कह दिया। अभी एक बात मैं रंग के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ, वो बड़ी रोचक बात है, आप ध्यान से सुने। मेरे पास आश्रम में तो सब किस्म के लोग रहते हैं ना, वहाँ तो भंगी रहते हैं और ब्राह्मण भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं, उनको सबको हक है। तो मेरे पास एक हरिजन बालक था, उसका नाम चक्रैया, वो ऐसा अच्छा था कि उसका मैं आपको बराबर बयान नहीं दे सकता हूँ, और वो ऐसा ही कहो कि नई तालीम में से वो फूला फला। तो वो चक्रैया तो बेचारा एक हरिजन और आंध्र देश का, तो तेलुगु भाषा बोलता था, लेकिन उसने हिंदुस्तानी अच्छी तरह से सीख लिया, उर्दू में भी लिखने का उसने शुरू कर दिया, और जितनी चीज़ें उनको मैं बता सकता था या तो आश्रम बता सकता था, वो सब करने की उसने कोशिश की, और बड़ा शरीफ लड़का था, क्यों ही कहो कि वो मेरा ही लड़का था। वो तो मर गया है, और मर गया है वो भी कैसे, वो लड़का ऐसा बहादुर था कि उसको परवाह नहीं थी कि किसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो क्या, वो तो ये समझता था कि नैसर्गिक उपचार से वो अच्छा बन सके तो अच्छा। तो आंध्र देश में एक नैसर्गिक उपचार करने वाला था तो वहाँ चला गया। उनका दिल ऐसा था कि मैं जितना सीखा हूँ और काफ़ी सीख लिया था, वो रसोई कर सकता था, सीने का कर सकता था, खादी वो सूट काट सकता था, बुन सकता था, कौन सी चीज़ उसमें नहीं थी, और ऐसा शरीफ था, झूठ नहीं बोलता, परेब नहीं करना, और ऐसा भी नहीं कि कोई हरिजन तो अभी ऐसे हो जाते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, हाँ तुमने बड़ा गुना किया है, अभी हमको ऐसा चाहिए वो नहीं, उसको हक कुछ चाहिए नहीं, उसको तो अपना धर्म का पालन करना है, और धर्म का पालन करने में से जितने हक होते हैं इतने हक को भी रखना। इतने में उनके उनके दिमाग में कुछ हो गया, होता है कि क्या बिगड़ गया था वो तो पता ही नहीं, तो बेचारा को चक्कर आ जाता था, उस पर से चक्रैया नाम नहीं था लेकिन चक्कर उसको आता था, तो वो गिर जाता था, तो पीछे वो बांधर देश में जाता था इस जगह पे, और वहाँ जाकर कुछ अच्छा रहता था, पीछे आश्रम में आता था, आश्रम को तो उसको कभी भूला ही नहीं। तो इस तरह से था, अभी भी वहीं गया था वो कि नैसर्गिक उपचार का अच्छी तरह से समझ लें तो पेशे आश्रम में नैसर्गिक उपचार के मार्फत से सबको अच्छा करें। लेकिन भगवान ने दूसरा ठाना था तो वो लड़का बीमार होकर आया तो पीछे उसने नहीं कहा कि मुझको डॉक्टर के वहाँ ले जाओ, लेकिन सीधा लड़का था पीछे वहाँ अस्पताल चलती है तो अस्पताल चलाती तो ये सुशीला बहन चलाती है, लेकिन वो चलाती है तो वो तो यहाँ वहाँ तो नहीं बैठी और वहाँ सारा दिन भर थोड़ी बैठ सकती है। तो वहाँ एक हरिजन है उसका नाम प्रभाकर है, वो सब चलाता है लेकिन वो तो ऋषि जैसा है इसी और उसको दूसरा चाहिए ही नहीं। आप मुझको पूछें कि कुछ उसको ये उसको दरमाया देते हैं, कोई दरमाया देता ही नहीं है, देता ही नहीं है। लेने देने की तो बात है, उनके पास से सेवा देना वही मेरा तो काम रहा। तो इस तरह से वो करता है तो उन्होंने और आश्रम में सब थे उन्होंने सोचा कि अभी चक्रे अच्छा नहीं होता है, उसकी आँख बिगड़ रही थी और करीब करीब चली गई थी तो उसको मुंबई में भेज दिया। तो मुंबई में भी पीछे आश्रम की एक लड़की है वो भी यहीं कहीं पड़ी है तो वो लड़की डॉक्टर ही सीख रही है, तो बड़ी हो गई है लेकिन हुआ ना ऐसा कि मैं ज़्यादा सेवा करना चाहती हूँ तो वो डॉक्टरी तो वो जब होगी तब, अभी तो एक बरस बाकी है, बड़ी मेहनत करती है लेकिन जितने आदमी जाते हैं ऐसे उनकी सेवा तो वो कर ही देती है। तो उसको दिखा कि लीलावती बहन तुम्हारे चक्रया को देख लेना है, तो चक्रया रहा वहाँ, वो उसकी सेविका बन गई, उसकी डॉक्टर नहीं बनी, वो तो अभी डॉक्टर जो सीख रहे हैं। तो वहाँ अच्छे डॉक्टर थे उनके मार्फत से उनको शस्त्रक्रिया करना ऐसा तय हुआ, मुझको तार दिया कि चक्रया पूछता है कि बापू क्या कहता है वो करो, तो मैंने तार दिया कि डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो। उसको भले ऑपरेशन बहुत कठिन था, कठिन तो ऐसा कि कोई बचते हैं बाकी मर जाते हैं, चक्रया मर गए। तो मैंने आपको सुनाया, वो मर गया इसलिए तो आपको सुनाना पड़ता है, और राजा के सामने और राजा के साथ मैंने चक्रया को रख लिया, क्यों जानबूझकर मैंने रखा है कि अगर हम माइयों को बच्चों को पैदा करना है तो चक्रया के जैसे पैदा करें। वो एक तुलसीदास का है, वो तो मैं तो अभी भूल गया हूँ तुलसीदास का है क्या का, तो वो मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा तो है कि अरे जननी तुझको अगर पैदा करना है तो दाता को पैदा कर या तो शूरवीर को पैदा कर। तो चक्रया तो मेरे नज़दीक दाता भी था और शूरवीर भी था। शूरवीर था क्यों कि किसी को मारता नहीं था, लेकिन मरते दम तक उस लड़का ने मुझको खत लिखा है, वो तो समझने के लायक खत है, और वो बेचारा अंधा सा था तो एक एक अक्षर उसने निकाला है ना तो देखने के लायक है, ऐसा उसका खत है। और उस खत में तो वो सब लिखता है, आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ, अगर से वो है तो हिंदुस्तानी में, लेकिन इसमें इतना है कि ऑपरेशन तो मैं कराना नहीं चाहता हूँ, वहाँ पड़ा है तो भी, लेकिन मैं तो वो नैसर्गिक उपचार करूँ, अगर मुझको हुक्म मिल जाए तो उसमें मैं मर जाऊँ तो कोई परवाह नहीं है उसको, लेकिन अगर हुक्म होगा कि करना है तो ऑपरेशन करवा लूँगा, उससे मर जाऊँगा तो उसमें क्या परवाह है, ईश्वर का नाम लेते लेते मैं मर जाऊँगा। तो वो लड़का ईश्वर का नाम लेते लेते मर गया। तो वो लड़का तो एक तो बहादुर था, सच्ची तरह से का बहादुर था, और उसके साथ डाटा था कि जितना उसके पास था वो सब, जैसा हम मंत्र पढ़ते हैं ना ईशावास्यम इलम सर्वम, उसी के मुताबिक वो उसमें तो यही है ना मंत्र में कि जो कुछ भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है लेकिन मेरा है, ईश्वर का है, और दूसरा का है उसका तो, उस पर तो उसको नज़र भी नहीं डालता है, वो चक्रया ने किया है। और चूंकि हरिजन होते हुए तो भंगीशा बना, ऐसा होते हुए वो सच्चा भक्त था। उस भक्त का नाम लेकर पर आपको समझना चाहिए कि हम तो हरिजनों की छुआछूत क्या रखते हैं और किसी से छुआछूत क्या रखें। और ऐसा हरिजन लड़का, उसमें इतना ज्ञान था कि उसके दिल में ये नहीं था कि अच्छा वो एक मुसलमान है, दूसरा हिंदू है, तीसरा क्या है, कुछ है। उसके सामने सब इंसान थे और सब इंसान का वो सेवक रहा, और इतना बहादुर लड़का था कि मैं तो रो नहीं सकता हूँ, रोना शुरू कर दूँ तो किसके लिए रोऊँ और किसके लिए खुश रहूँ, किसके लिए खुश रहूँ, लेकिन मैं ये तो समझता हूँ कि मैंने एक बड़ा बहादुर और बड़ा दाता ऐसा लड़का को खो डाला। वो खोने के तो अभी तो दो दिन हुए हैं और लड़की तो पीछे वहाँ रह नहीं सकी, उसके बाद तो उसने टाल दिया कि मैं तो अभी चार पाँच दिन तुम्हारे साथ रह तो जाऊँ तो भूल जाऊँगी, क्योंकि वो लड़की तो, वो तो हरिजन वाला नहीं है, वो तो दूसरा ही है, उसका किस्सा तो दूसरा ही है। इतना ही मैं आपको सुनाना चाहता था। तो उसका नतीजा ये आया कि एक तरफ से भोपाल के नवाब साहिब की बात आपको सुना दी और एक तरफ से चकरिया की सुना दी। मैंने बताया कि भोपाल उसके नवाब साहिब भी रह सकते हैं हिंदुस्तान में, और चकरिया जैसे होकर करोड़ों आदमी रहें तो हम सब सुख से रहने वाले हैं, दूसरा कुछ है ही।